अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। कभी कुछ हीरोज की कहानियां, कभी सुपरमैन की कहानियां, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां जिसमें बहुत सारी फेरी टेल्स भी होती हैं। लेकिन जनाब, जो कहानियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन वो रियलिटी पे बेस्ड है, यानी कि हकीकत में वो वाकयात हो चुके हैं। और जनाब, उन वाकयात का ताल्लुक हमारे तीसरे इमाम यानी हुसैन अलैहिस्सलाम से था। यकीनन आप लोग सही पहचाने हैं जनाब, इन वाकयात का ताल्लुक करबला से है। शहदाए करबला के बारे में तो आप लोग बहुत ज्यादा सुनते ही रहते हैं, क्योंकि बहुत दफा जिक्र तो आता है ना, मौला गाजी अब्बास का, हजरत अली अकबर का, हजरत अली असगर का, हजरत कासिम का और बहुत से ऐसे शहदा का। लेकिन जनाब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत से ऐसे अजहाब जो कि करबला में शहीद हुए, उनका आप नन्हे मुन्ने साथियों को पता नहीं है, इसलिए कि उनका जिक्र बहुत आम तौर पर होता नहीं है। तो जनाब, हमने सोचा कि हम आपके लिए लेकर आए बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे वाकयात जिनके जरिए आपको शहदाए करबला की अजमत का अंदाजा हो सके। प्यारे बच्चों, ये जो पहला वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं ना, ये एक ऐसे शहीद का वाकया है जो कि बहुत बुजुर्ग थे। जी जनाब, उनकी उम्र 100 बरस से भी ज्यादा थी, यानी कि वो 100 साल से भी बड़े थे। और उनकी एक बहुत बड़ी फजीलत ये थी कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सहाबी थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम के भी, उनके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी। तो जनाब, उन्होंने इन चार मासूम हस्तियों को तो देखा ही था, बल्कि इनके अलावा उनको इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकिर की जियारत का भी शर्फ नसीब हुआ था। जी अब आप सोच रहे होंगे इनका नाम क्या है, तो जनाब, उस बुजुर्ग हस्ती का नाम है अंस बिन हारिस काहली। वो अपने जमाने के बहुत ही बुजुर्ग, बहुत प्यारी खूबसूरत शख्सियत और बहुत आला हाफिजे के मालिक बुजुर्ग थे। जनाब, उनकी पर्सनालिटी तो बहुत प्यारी थी ही, उसके साथ साथ उनका इल्म भी बहुत ज्यादा था, और उनको इन तमाम मासूमीन की जिंदगी के वाकयात बहुत अच्छी तरह से जहन नशीन थे। जनाब, इन्होंने वो तमाम वक्त देखा जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मौका पर मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान किया। ये उन असहाब में से थे जिन्होंने पूरे भरपूर तरीके से हजरत अली अलैहिस्सलाम का साथ दिया, और खिलाफत के दौरान भी ये हमेशा हजरत अली अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे। उसके बाद जब इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद माविया ने तख्त संभाला, तो क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे कि ये उमवी लोग कितने बुरे लोग हैं और ये अहले बैत की दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो जनाब, इन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर लोगों को गुमराही से बचने की खूब तलकीन की और हमेशा इमाम का साथ देते रहे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारी आई, तो ये अपनी पूरे इल्म और अपनी पूरी कुव्वत के साथ इमाम के साथी बन गए और हमेशा हर वक्त इमाम के साथ रहे। जनाब, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या वो हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही रहते थे? तो नहीं, वो रहते थे कूफा में, और उनको सारी इत्तलात वहां पहुंचती रहती थी, इसलिए क्योंकि कूफा में भी तो मुआविया का एक गवर्नर था ना, जिससे वो शदीद नफरत करते थे। जब मुआविया फौत हुआ, यानी कि वो मर गया, तो हजरत अंस बहुत खुश हुए, क्योंकि वो मुआविया की बदकारियों से खूब वाकिफ थे और वो ये जानते थे कि ये सारा खानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम को तंग करने में कैसे आगे आगे रहता था। लेकिन इसके साथ ही उनको एक बहुत बुरी खबर मिली, और वो खबर ये थी कि यजीद खुद ही जोर जबरदस्ती के तहत खलीफा बन बैठा है, और अब वो हर किसी से बैत लेने के लिए कोशिशें कर रहा है, और यही कोशिश उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी की। लेकिन जनाब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जाहिरी बात है यजीद की बैत कभी भी करने के लिए नहीं मानते, तो इमाम ने इनकार कर दिया। और वो ये बात भी जानते थे कि कूफा वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा, और उस खत में ये लिखा कि इमाम, अब माविया तो मर चुका है, तो अब हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कूफा तशरीफ ले आइए, ताकि हम आपकी बैत कर सकें। जनाब जब ये खत इमाम अलैहिस्सलाम को मिला तो इमाम ने अपने एक सफीर यानी हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा वालों की तरफ भेज दिया। अब शुरू में तो कूफा वालों ने बहुत आवभगत की हजरत मुस्लिम की और खूब बैत की हजारों लोगों ने, लेकिन कूफा वाले दरहकीकत बहुत डरपोक लोग थे। जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने अपने मजालिम शुरू किए तो कूफा वाले सब के सब हजरत मुस्लिम को छोड़कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ मिल गए और यूं हजरत मुस्लिम अकेले रह गए। और उबैदुल्लाह ने इंतहाई जुल्म के साथ हजरत मुस्लिम को शहीद करा दिया। जब ये सब कुछ हजरत अंस ने देखा तो उनसे रहा ना गया। अब हजरत अंस को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आई और वो बात ये थी कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मकाम पर शहीद कर दिया जाएगा। तुम में से जो भी तब जिंदा हो और इस बात की मारफत रखता हो वो जरूर उनका साथ दे। अब हजरत अंस इस वादे को पूरा करने के लिए निकल खड़े हुए और उन्होंने रखते सफर बांधा इमाम की तरफ। इतना मुश्किल सफर और बुढ़ापा, लेकिन हजरत अंस का हौसला बहुत बुलंद था। अगरचे कि वो बहुत बुजुर्ग थे और जयीफ थे, लेकिन वो ये जानते थे कि जिस राह पर वो जा रहे हैं वो सादत का रास्ता है, यानी वो इमाम का साथ देने जा रहे थे और वो ये जानते थे कि इमाम की रजा में तो अल्लाह ताला की रजा है। तो जनाब अब वो पूरे अज़्म के साथ अपने रास्ते पर रवा दवा थे। सहरा था, प्यास थी, गर्मी थी, लेकिन वो बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने इमाम से मिलने जो जा रहे थे। जनाब काफी दिनों की मुसाफत के बाद और बहुत सी मुश्किलें तय करने के बाद वो पहुंचे इमाम के काफिले तक। जैसे ही काफिले के लोगों ने हजरत अंस को आते देखा तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि जब भी कोई जंगजू काफिले में शामिल होता तो तमाम असहाब बहुत खुश होते और बहुत तपाक से उसका इस्तकबाल करते। और हजरत अंस की तो क्या बात थी, क्योंकि उन्होंने इतने सारे मासूमीन को देखा और उनका साथ दिया था, इसलिए सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब जनाब दिन गुजरते गए और मुश्किलें बढ़ती गईं। पानी बंद हुआ, करबला की गर्मी और इस शिद्दत के आलम में मजालिम। उम्र साद की फौज ने कोई तरीका नहीं छोड़ा जिससे वो इमाम को तंग कर सकते, लेकिन इमाम और उनके असहाब के हौसले बहुत बुलंद थे और वो शहादत पर अपनी नजरें जमाए बैठे थे। अब आन पहुंची शबे आशूर। जनाब ये वो रात थी जो कि नौ मुहर्रम का दिल ढलने के बाद शुरू हो गई, और इस रात में तमाम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा थे और उनकी कोशिश थी कि अपने आखिरी लम्हात को अपने प्यारे इमाम के साथ गुजारें। कोई इबादत में मशगूल था, कोई इमाम अलैहिस्सलाम की मुनाजात सुनने में मसरूफ था, और यही हाल हजरत अंस का भी था। ये रात गुजर गई, अब दिन शुरू हुआ, यानी आशूरा का दिन, 10 मुहर्रम का दिन। ये कुर्बानियों का दिन था। सुबह ही से उम्र साद की फौज ने जंग का आगाज किया और इमाम के बहादुर साथियों ने उनका मुकाबला शुरू किया। एक के बाद एक साथी शहीद होता गया। अब बीच में थोड़ा वक्फा आया जिसमें दोनों अतराफ के लोगों ने अपने अपने लाशों को इकट्ठा किया, अपने अपने सफों को दुरुस्त किया। ये वो वक्त था जब हजरत अंस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने फरमाया कि कोई है जो जाए और इन लोगों को ये बताए कि किस कदर गुमराही में मुब्तला है, और शायद इनमें से कोई ऐसा हो जो अबदी सादत की तरफ आ जाए, यानी इमाम के साथियों की बात सुन ले और इमाम के साथ शामिल हो जाए और जहन्नुम से बच जाए। अब हजरत अंस ने ये बेड़ा संभाला और वो इमाम का पैगाम लेकर उम्र साद के पास गए, लेकिन उन्होंने वहां जाकर उसको सलाम नहीं किया। उम्र साद ने उनसे कहा, क्या तुम हमें खुदा का मानने वाला नहीं समझते? हजरत अंस ने फरमाया कि जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, क्या इसके बाद भी तुम ये समझते हो कि तुम हिदायत के रास्ते पर हो? उम्र साद ने अपनी गर्दन को झुका लिया और कहने लगा, मुझे मालूम है कि हुसैन इब्ने अली को शहीद करने वाला जहन्नुमी है, लेकिन मैं क्या करूं, इब्ने ज़ियाद का हुक्म मानना बहुत जरूरी है। हजरत अंस ये बात सुनकर अफसोस से वापस आ गए और उन्होंने जंग के लिए तैयारी शुरू की। उनकी कमर जो कि ज़ईफ़ी की वजह से बहुत झुक चुकी थी, उसको उन्होंने कपड़ा बांधकर सीधा किया, और उनके अबरू जो कि ज़ईफ़ी की वजह से उनकी आंखों पर ढलक चुके थे, ان کو کپڑا باندھ کر اپنے ماتھے پر سنبھالا اور اس کے بعد وہ تلوار سنبھال کر جنگجو کی طرح میدان کی طرف بڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو امام کی آنکھوں میں اشک آ گئے، یعنی امام بہت افسردہ ہوئے، اور امام نے یہ دعا کی کہ اے بزرگ، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت انس نے جوانوں کی طرح، جنگجوؤں کی طرح خوب جنگ کی اور بہت سے دشمنوں کو فنار کیا، لیکن کچھ ضعیفی، کچھ پیاس، اور کہاں ہزاروں کا مجمع اور ایک بزرگ ہستی۔ اور اس کے بعد یہ جنگجو، امام کے یہ بہادر سپاہی، جنگجوؤں کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہوں نے ابدی سعادت پائی۔ یہ تھے امام کے وہ پیارے ساتھی جنہوں نے اپنی ضعیفی، اپنی بزرگی کے باوجود امام کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہادت کا رتبہ قبول کیا۔ ساتھیوں، واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، یہ وہ اصلی ہیروز ہیں جنہوں نے حقیقی زندگی میں بہت بڑے معرکے اور کارنامے سر انجام دیے۔ اور یہ بات تو آپ لوگ جان گئے ہیں کہ صرف بہادری سے جنگ کرنا ہی ان کا شیوا نہیں تھا، بلکہ علم، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں شامل رکھنا بھی ان لوگوں کا کام تھا، اور یہ اس پر ہمیشہ ڈٹے رہے۔ تو ساتھیوں، یہ تو ہمیں اس سے سبق ملا نا کہ بھئی صرف بہادری ہی ایک واحد چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پرہیزگاری، عبادت اور علم کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں پوری زندگی، تاکہ ہم اپنے امام کو بھی خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی، ہے نا؟ اب جناب، آپ اگلے ہیرو یعنی ہمارے اگلے شہید کا واقعہ سننے کے لیے تو خوب بیتاب ہوں گے، لیکن ابھی آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جناب، اگلے واقعے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔